मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 29 जनवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथी मित्रों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 8 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मोहम्मद फैजल अहमद, आपका गांव है सादीपुर, जिला गया बिहार से। तुलसी कुमारी, आपका गांव है बलुआचक, जिला भागलपुर बिहार से। रघुनाथ विश्नोई, आपका गांव है सांचौर, जिला जालौर राजस्थान से। वसीम, हरिद्वार उत्तराखंड से। विवेक कुमार झा, कोलकाता पश्चिम बंगाल से। अमर कुमार सिन्हा, गिरिडीह झारखंड से। शिवांश वर्मा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और ब्रिजराज कुशवाहा, स्वराजपुर उत्तर प्रदेश से। तो मोहम्मद फैजल, तुलसी, रघुनाथ, वसीम, विवेक, अमर, शिवांश और ब्रिजराज, आप सभी 8 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आपसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी दूसरी खबरों की चर्चा करना चाहूंगा। और इनफैक्ट सच पूछिए तो न तो दूरदर्शन पर कोई ऐसी खबर थी और न ही रेडियो पर कि उसे आधार बनाकर हम कुछ बातें कर सकें, और स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अखबारों में जरूर कुछ बातें हैं, थोड़ा समय आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा। एक मैं आपको बहुत ही खूबसूरत क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपके जाने माने लेखक के द्वारा लिखा गया है, वो है डॉक्टर भरत झुनझुनवाला। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात इस आर्टिकल में बताई नहीं है बल्कि समझाने की कोशिश की है, और यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का सर्वोत्तम तरीका भी है। जहां आपको चीजें पढ़ाई न जाएं, जहां आपको चीजें बताई न जाएं, बल्कि चीजें समझाई जाएं, क्योंकि जब एक बार हमें चीजें समझ में आ जाती हैं तो वह हमारी चेतना या हमारी सोच विचार का हिस्सा बन जाती हैं और फिर हम उसे अपने जरूरत के हिसाब से ढालने के योग्य बन जाते हैं। इसमें इन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें, भले ही आपको 2-3-4 बार इसे क्यों ना पढ़ना पड़े। अभी आपको मालूम है कि जो एजेंसीज आती हैं, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी IMF और कभी दूसरे भी सलाहकार संस्थाएं होती हैं, जैसे कि अभी ही एक संस्था है, सलाहकार संस्था है विश्व की बहुत इंपॉर्टेंट, शुमार प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, उसने अभी घोषणा की कि एक साल के अंदर भारत जो है वो ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत अभी 6वें स्थान पर है, ये बात उसने कही और आपने पिछले 3-4 दिन के अखबारों में देखा होगा कि इसको लेकर के अखबारों में काफी कुछ छपा भी। उन्होंने अपने इस आर्टिकल में इसके रियलिटी को बताया है, और इनफैक्ट सच पूछिए तो इसके माध्यम से उन्होंने GDP की रियलिटी को बताया, सकल घरेलू उत्पाद, कि ये सकल घरेलू उत्पाद का जो कैलकुलेशन होता है इनफैक्ट सही मायने में उस तरह का नहीं होता कि वह किसी देश की अर्थव्यवस्था को रिफ्लेक्ट कर सके या वहां के लोगों के जीवन स्तर को रिफ्लेक्ट कर सके। उदाहरण के तौर पर मैं केवल एक उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करूंगा, पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन के बारे में उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटेन ठीक है, अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम उसको पछाड़कर 5वें स्थान पर आ जाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटेन अभी जितना भी उत्पाद कर रहा है उस उत्पाद को करने वाली जो जनसंख्या है वो 7 करोड़ है, यानी कि 7 करोड़ लोग उतना उत्पादन कर रहे हैं या उतनी इनकम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन भारत जब उसको पछाड़ देगा और मान लीजिए कि वो थोड़ी सी ब्रिटेन से अधिक उत्पादन करने लगेगा तो लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि उस उत्पादन को करने वाले लोग कितने हैं। हमारे पास है 130 करोड़ से ज्यादा लोग, तो ये 130 करोड़ लोग मिलकर जितना उत्पादन कर रहे हैं, अगर हम बहुत सरल भाषा में कहें तो ब्रिटेन अकेला उतना उत्पादन कर रहा है, 7 करोड़ लोग ब्रिटेन अकेला देश जिसमें 7 करोड़ लोग हैं, वो मिलकर कहां 7 करोड़ और कहां 136 करोड़। तो उन्होंने बताया कि यह ठीक ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और भी उन्होंने दूसरे बहुत से उदाहरण दिए हैं और बहुत खूबसूरत उदाहरण दे देकर के उन्हें समझाया है, उन्होंने समझाया है। तो मैं चाहूंगा कि इसको बहुत ध्यान से आप सब पढ़ें और जो सकल घरेलू जिसे हम GDP कहते हैं उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, इसके अतिरिक्त मैं आज आपको 2 और आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, उन पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। एक है अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को लेकर के जो बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है, और दूसरा है सरकारी स्कूलों में शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, इसको आधार बनाकर के राहुल खुल्लर जी ने बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखा है। चूंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें थोड़ा सा विशेष ध्यान से पढ़ें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। ठीक इसी तरह से आज करेंट कंटेंट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है जो हिंदू में छपा था, जो बेसिकली सोशल ऑडिटिंग पर है। सोशल ऑडिटिंग, और ये जो सोशल ऑडिटिंग है इस पर अब बहुत बात होने लगी है, पूरी दुनिया में सोशल ऑडिटिंग चल रही है। देखिए, सोशल ऑडिटिंग का मतलब है कि जैसे सरकार कोई योजना बनाती है और उस पर पैसा खर्च करती है ना, चाहे वो हेल्थ पर कर रही हो, एजुकेशन पर कर रही हो, जो जिस पर भी पैसा खर्च हो रहा है सरकार का सोशल वेलफेयर के तहत। अब सवाल यह है कि अब इसका अनुमान कैसे लगाया जाए कि इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो सोशल ऑडिटिंग बेसिकली, बहुत सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि इस उसके परिणाम को समझने का एक तरीका है, और ये काफी समय से भारत में भी चल रहा है। तो अब उस सोशल ऑडिटिंग के लिए अब किन किन बातों की और जरूरत है, उसे कैसे हम ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, इसको आधार बनाकर के आर्टिकल लिखा गया है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज इस आर्टिकल को भी आप ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसे आप सार्वभौम न्यूनतम आय भी कह सकते हैं। इस विषय को मैंने खासकर इसलिए चुना है क्योंकि कल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, देखा आपने, कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है दूसरों के सहयोग से तो हम न्यूनतम आय सुनिश्चित करेंगे, यानी कि जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों को, देश के हर नागरिक को आप कह लीजिए जो गरीब नागरिक है, उनको न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। ये बात उन्होंने कही, देश के सभी गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी। अब हालांकि इसमें उन्होंने कहा है देश के सभी गरीब लोगों को, लेकिन जब हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करते हैं तो फिर सभी सिटीजन्स के लिए हो जाते हैं, सभी नागरिकों के लिए। लेकिन बट नेचुरल है कि फिर जब आप उसे व्यावहारिक रूप में लेंगे तो फिर वह हो जाता है गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी। जैसे आप देखिए, हमारे यहां शिक्षा की गारंटी दी जा चुकी है, हमारे यहां खाद्यान्न की भी गारंटी दी जा चुकी है, इसी तरह से आप यूं कह लीजिए कि न्यूनतम आय की भी गारंटी दी जा सकती है। और देखिए, भारत तो एक विकासशील देश है, यहां तक कि जो विकसित देश हैं उनमें भी यह व्यवस्था प्रचलित है। आप ये मत समझिएगा कि यह केवल भारत में हो रहा है या इससे लोग निकम्मे हो जाएंगे, इससे लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर हमारे दिमाग में यही बातें आती हैं कि अगर सबको न्यूनतम आय की गारंटी दे दी गई तो फिर लोग काम क्यों करेंगे, क्योंकि उनकी आमदनी तो हो ही रही है। लेकिन आप इसे इस रूप में देखें कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी कई पुश्तें बैठ करके खा सकती हैं, इसके बाद भी वो फैक्ट्री क्यों खोलते जा रहे हैं, काम क्यों करते जा रहे हैं। तो सामान्य रूप से सोचने पर हमें लगता है कि ये बहुत ही गलत कदम होगा, लेकिन इनफैक्ट जब व्यावहारिक रूप में आप देखेंगे तो कुछ अलग ही स्वरूप उसका दिखाई पड़ता है। मित्रों, ये जो सार्वभौम न्यूनतम आय की जो शुरुआत हुई है भारत में, ये सच पूछिए तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2017 में, 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे में, उस समय जो हमारे वित्तीय सलाहकार थे फाइनेंशियल एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम जी ने, उन्होंने इस योजना की सिफारिश की थी कि भारत को यह न्यूनतम आय गारंटी शुरू करनी चाहिए। अब इसका सीधा सा देखिए अर्थ है, अर्थ यह है कि जो देश का नागरिक है, जब हम सार्वभौम की बात करते हैं तो फिर हो जाता है देश के प्रत्येक नागरिक को एक न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाए, चाहे वह आय मंथली दी जाए, चाहे वह आय ईयरली दी जाए और यह आय इतनी होनी चाहिए कि उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो सके। सीधी सी बात है कि अगर देश गरीबी में जी रहा है, देश में भुखमरी है, देश कुपोषण का शिकार है, तो उसका उपाय जो हो सकता है इनफैक्ट वो यही कि उनकी आय सुनिश्चित कर दी जाए कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा। अब आप देखें कि सरकार इस काम को करने के लिए अलग अलग रास्ते अख्तियार करती रही है। जैसे अगर हम रोजगार गारंटी योजना को लें तो रोजगार गारंटी योजना भी कहीं न कहीं बेसिक न्यूनतम जो आय है उसको सुनिश्चित करने का एक आधार ही था कि भाई आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है, ये कानून के तहत आप काम मांग सकते हैं और अगर हम आपको काम नहीं दे सकेंगे, सरकार कह रही है कि अगर हम आपको काम नहीं दे सकेंगे तो हम आपको घर बैठे ही पैसा देंगे, लेकिन अगर काम है तो फिर आप काम कीजिए और उसके बदले में इतना पैसा लीजिए। तो वह भी देखिए कि एक न्यूनतम आय गारंटी योजना ही है, लेकिन वो बेसिकली रोजगार योजना है, न्यूनतम गारंटी आय योजना नहीं है। यहां वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई भी नागरिक हो, काम करे न करे, उसके खाते में एक निश्चित राशि डाल देनी चाहिए। मित्रों, ये जो यूबीआई हम कह रहे हैं, इसी के नाम अलग अलग देशों में कुछ अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि इसी को ब्रिटेन में जो कहा जाता है वो है सिटीजन्स बेसिक इनकम। ब्रिटेन में, ब्रिटेन लगभग 1950 के आसपास इसको शुरू किया था। अमेरिका, ये दो नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ताकि आपके दिमाग से ये बात हटे कि ये केवल गरीब देशों के लिए ही है या विकासशील और अविकसित देशों के लिए ही है। अमेरिका में इसे ही कहा जाता है बेसिक इनकम गारंटी। बेसिक इनकम गारंटी है सब वही जिसे हम यहां यूबीआई कह रहे हैं। इसकी जो कल्पना की गई थी मित्रों, इसकी कल्पना 16वीं शताब्दी में एक विचारक हुए थॉमस मूर नाम आपने सुना होगा। उन्होंने इसकी बड़ी, आप कह लीजिए कि कल्पना, एक बहुत ही यूटोपियाई जो बात होती है, उस समय लोगों को लगा कि ये क्या फालतू की बात की जा रही है। उसमें उन्होंने कहा था कि देश के प्रत्येक नागरिक की जो न्यूनतम आय है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने उस समय ये बात कही थी और बाद में फिर कुछ विचारकों ने उनकी इस बात का समर्थन भी किया। तो उस समय लोगों को लगता था कि ये कैसे संभव है, लेकिन आज आप देखिए कि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि लगने लगा है कि नहीं, यह इंश्योर किया ही जाना चाहिए। और मैं यहां एक बात और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये जो डिमांड हो रही है यूबीआई की, ऐसा नहीं है कि अब केवल भारत या भारत जैसे देशों में हो रही है, बल्कि दुनिया के दूसरे भी बहुत से देशों में होने लगी है। उसका कारण ये है कि जो ऑटोमेशन बढ़ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण रोजगार के अवसरों में कमी आती चली जा रही है, तो अब नेचुरल है कि नागरिकों में रोष है कि उनका गुजारा हो कैसे, अपना जीवन यापन कैसे करें। ऐसी स्थिति में अब राज्य इन बातों पर विचार करने लगी है कि उनकी आय सुनिश्चित की जाए। तो दोस्तों, यह है यूबीआई। यहां मैं एक तथ्य आपको और स्पेशली बताना चाहूंगा कि ब्राजील ने काफी पहले एक योजना शुरू की थी, रेफरेंस के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उस योजना का नाम है बोल्सा फैमिलिया, बोल्सा BOLSA फैमिलिया, FAMILIA। ब्राजील सरकार का यह बेसिकली एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम था और ब्राजील सरकार ने जब सोचा कि हमारे यहां से अब भुखमरी खत्म करनी है, तो उस भुखमरी खत्म करने उसने एक योजना चलाई थी, फोन जीरो, यानी कि एंटी हंगर योजना। तो उसका एक पार्ट था बोल्सा फैमिलिया। बोल्सा फैमिलिया में वो करते क्या थे कि जो गरीब परिवार हैं उनको वो नगद आर्थिक सहायता देते थे, नगद आर्थिक। जैसे हमारे यहां देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत हम क्या करते हैं, उन्हें अनाज देते हैं और अनाज के बदले में बहुत कम कीमत लेते हैं, नहीं के बराबर। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें हम सीधे सीधे नगद आर्थिक सहायता देंगे। और उन्होंने एक शर्त लगाई, यानी कि ये जो आर्थिक सहायता थी ये सशर्त थी, और शर्त ये लगाई कि यदि उस परिवार में बच्चे हैं तो उस परिवार के लोगों को ये इंश्योर करना होगा कि उनके जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएं। अब आप देखिए कि एजुकेशन का भी काम इससे हो रहा है। बकायदे टीकाकरण करवाएं, बकायदे टीका लगाएं, तो हेल्थ का भी काम हो रहा है। और ऐसा नहीं कि वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में उपस्थित भी रहें और अगर वे ये तीन शर्तों को पूरा करेंगे तब तो उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी, अदरवाइज आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। और जो इन शर्तों को पूरा करता था उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता था। और पूरी दुनिया में जो बोल्सा फैमिलिया है इसकी काफी चर्चा हुई और बहुत दुनिया के बहुत से जो दूसरे देश हैं अब वो इसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो इस रूप में भी आप इसकी चर्चा यूबीआई के तहत कर सकते हैं एक मॉडल के रूप में। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में मैं आप सबको बता ही चुका हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं तेजिंदर सिंह, अक्षित चौधरी नई दिल्ली से, रविंद्र कुमार वर्मा वस्सी उत्तर प्रदेश से, विश्वजीत सीकर राजस्थान से, सतीश कुमार संत प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, संतोष पाल, अर्जुन पाटीदार उज्जैन मध्य प्रदेश से और संगीत, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।